आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये क्लास 10th के साइंस का 10th चैप्टर है। आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम फटाफट से देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा है। तो इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में बिगिनिंग ही की थी, तो हमने यहाँ पर कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट को ही रिवाइज किया था। जैसे कि हमने बात की थी कि लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ लॉज होते हैं, जिसमें दो मेन लॉज होते हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि जब भी कभी किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, मिरर पर लाइट पड़ती है, तो वो ऐसे पड़ती है कि जिस पॉइंट पर वो पड़ रही है वहां पर आप तीन लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। एक इंसिडेंट रे की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल टू द मिरर सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, और तीसरा आप रिफ्लेक्टेड रे की लाइट या फिर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और जिस पॉइंट पर आप ये ड्रॉ करेंगे तीनों लाइंस, वो पॉइंट जो होगा वो बेसिकली इन तीनों लाइंस को एक ही प्लेन में कैरी करेगा। और दूसरा लॉ है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल्स बनाती हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों ही इक्वल होते हैं जब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लाइट पड़ती है, और जब रिफ्लेक्ट होती है तो जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। उसके बाद प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट को भी हमने रिवाइज किया था कि प्लेन मिरर से जब इमेज की फॉर्मेशन होती है तो वो कैसी होती है, इक्वल साइज की होती है, वर्चुअल होती है, यानी कि आप उस इमेज को स्क्रीन पर नहीं ला सकते। और जब भी इमेज बनती है किसी प्लेन मिरर से तो वो इमेज ऐसी होती है जो कि इक्वल डिस्टेंस पर होती है बिहाइंड द मिरर, जितनी दूरी पर आप खड़े हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होती है। साथ ही में जो प्लेन मिरर है जब वो इमेज की फॉर्मेशन करती है तो वो लेटरल इन्वर्जन करती है, यानी कि अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो आपकी इमेज जो होगी प्लेन मिरर के अंदर वो राइट हैंड उठाती हुई आपको दिखेगी, इसे लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात की थी, दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स, यानी कि एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है वो बल्ज्ड इनसाइड होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ से मुड़ा हुआ होता है। आप लोग यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हैं, पेज नंबर 161 फिगर 10.1 में कॉनकेव मिरर कैसा दिखता है ये आप लोगों को दिखाया गया है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड इनवर्ड्स है, अंदर की तरफ से मुड़ा हुआ है। जैसे आप चम्मच से खाना खाते हैं तो जिस साइड से आप खाना खाते हैं उस तरीके का कुछ दिख रहा है। साथ ही में कॉन्वेक्स मिरर जो है उसमें वो कैसा है, वो है कर्व्ड आउटवर्ड्स, यानी कि बाहर की तरफ से वो मुड़ा हुआ है। और इसे आप समझ सकते हैं कि जैसे आपका जो चम्मच है जिस साइड से आप खाते हैं उसकी उल्टी साइड जो होती है वैसा कुछ दिख रहा है। उसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में हम लोगों ने बात की थी, जो कि आपने पहले भी की हुई है, छोटी क्लासेस में भी की हुई है, उसे हमने रिपीट ही किया था यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों मिरर्स जो हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये किसी एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है जहाँ से इन्हें कट किया गया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी एक स्फेरिकल मिरर से इन्हें काट करके निकाला गया है और इनको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बनाया गया है। तो जिस भी स्फेरिकल मिरर से इनको निकाला गया है उस स्फेरिकल पार्ट का एक सेंटर पॉइंट होगा, जैसे कि हर एक सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है या फिर स्फीयर का एक सेंटर पॉइंट होता है, तो वो सेंटर पॉइंट जो स्फेरिकल मिरर का होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और उसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली कोई भी स्फीयर हो, कोई भी सर्कल हो, उसका रेडियस भी कुछ होता है, तो इसी तरीके से स्फेरिकल मिरर का भी कोई रेडियस रहा होगा जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो पॉइंट जो कि आपके कॉनकेव मिरर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो उसे पोल कहेंगे, और ये पोल हमेशा मिरर के ऊपर ही होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 162 पर जो फिगर 10.2 है, इसमें आप लोगों को जो कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया गया है कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी, वो क्या है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और साथ ही में पी सी डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। उसके बाद हम लोगों ने फोकस के बारे में भी बात की थी कि अगर कभी आप कोई लाइट पड़वाते हैं कॉनकेव मिरर पर जो कि इन्फिनिटी से आ रही हो, इन्फिनिटी से आने का मतलब ये है कि आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा दूरी पर रखी है, तो पैरेलल रेज कभी भी आपको दिख रही है तो इसका सिंपल मीनिंग यही है कि ऑब्जेक्ट आपकी बहुत ज़्यादा दूरी पर रखी हुई है, तो अगर आप ये ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूरी पर रखी होगी तो उससे जो लाइट इंसिडेंट होगी आपके मिरर्स के ऊपर, उससे रिफ्लेक्ट होकर, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वो लाइट जिस भी पॉइंट पर इकट्ठा होती है वो फोकस होता है, फोकस ऑफ द मिरर। तो कॉनकेव मिरर में जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इंस्टेंट लाइट, और एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है, इकट्ठा होती है, तो उस पॉइंट को फोकल लेंथ, फोकस ऑफ द मिरर कहते हैं। और वो डिस्टेंस जो आप पोल से फोकस तक की दूरी को मेजर करते हैं उसे फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर पी एफ जो होगा वो आपका फोकल लेंथ होगा, और कैपिटल एफ जो है वो फोकल है या फिर फोकस है। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में भी आपको दिखाया गया है कि जब भी इंसिडेंट लाइट पड़ती है कॉन्वेक्स मिरर पर, तो वो पॉइंट जहां से ये कन्वर्ज होती हुई अपीयर होती है उसे फोकस ऑफ द मिरर कहते हैं। और डिस्टेंस जो है पी एफ, कैपिटल पी कैपिटल एफ, ये क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। तो यहाँ तक हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब पेज नंबर 162 पर ही एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 10.2। ये बहुत ही इजी है। इसको आपको कैसे करना है, आपको कॉनकेव मिरर लेना है और आपको उसको धूप में आपको जाकर के ये एक्टिविटी करनी है फील्ड में निकल करके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी जो लाइट आप मिरर से रिफ्लेक्ट करवाएं वो अपने ऊपर या किसी दूसरे बच्चे पर ना करवाएं, क्योंकि इससे बर्न हो सकते हैं, इससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से ये एक्टिविटी करनी है। तो आपको क्या करना है कि आपको कॉनकेव मिरर ले लेना है और आप ओपन एरिया में जाएंगे जहाँ पर धूप अच्छी होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे कि आप कुछ इस तरीके से एक पेपर ले लेंगे, एक प्लेन शीट ऑफ पेपर ले लेंगे, वाइट पेपर ले लेंगे, और धूप से जो लाइट आ रही है उसको कॉनकेव मिरर से आप रिफ्लेक्ट करवा के एक प्लेन शीट, वाइट शीट पर फोकस कराएंगे। उसके ऊपर आप थोड़ा बहुत टिल्ट करेंगे, थोड़ा बहुत रोटेट करेंगे, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी आपके कॉनकेव मिरर से वो आपके प्लेन शीट पेपर पर पड़ने लगेगी। तो जिस पॉइंट पर वो पड़ रही होगी आपको क्या करना है, बेसिकली थोड़ी देर तक वैसे ही पॉइंट पर पड़वाते रहना है उस रिफ्लेक्टेड लाइट को, और कुछ देर बाद आप देखेंगे कि पेपर जो है वो जलने लग जाएगा। तो पेपर जलने इसलिए लग जाएगा क्योंकि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली सन की जो रेज है उसे कंसंट्रेट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, पेपर पर। तो जाहिर सी बात है अगर आप सूरज की गर्मी को कहीं पर कंसंट्रेटेड फॉर्म में लगा रहे होंगे तो उससे बहुत ज्यादा ही हीट पैदा होगी और वो चीज जल सकती है। तो यही कारण है कि आपका जो पेपर है वो थोड़ी देर बाद जलने लग जाता है। और इसीलिए आप लोगों को मना भी किया गया था कि जो लाइट आप कंसंट्रेट करवाएंगे, रिफ्लेक्ट करवाएंगे फ्रॉम सन, उसे आप किसी बच्चे पर या खुद पर ना करवाएं, क्योंकि इससे आप भी, आपको भी कोई नुकसान हो सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि आपने पढ़ा हुआ है कि जो इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, बहुत दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, फॉर एग्जांपल सन, तो उससे जो लाइट आ रही है जब वो मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो जिस पॉइंट पर वो इकट्ठा हो रही है वो उसका फोकस होता है। तो बेसिकली जिस पेपर पर, जो पेपर आपने लिया था प्लेन शीट ऑफ पेपर, वहां पर आपने लाइट रेज को फोकस करवाया था, वहां पे आपने उसे इकट्ठा करवाया था, क्योंकि आपको वो इमेज जो है सन की लाइट के फॉर्म में पेपर के ऊपर दिख रही थी। तो ये जो होगा, जिस पॉइंट पर लाइट इकट्ठी हो रही है आपके प्लेन शीट ऑफ पेपर पर, वो आपके कॉनकेव मिरर का फोकस होगा। और आप फोकल लेंथ भी मेजर कर सकते हैं अपने मिरर का। तो फोकल लेंथ मेजर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपने जहाँ पर अपना मिरर पकड़ा हुआ है, कॉनकेव मिरर, वहां से अपने प्लेन शीट ऑफ पेपर जहाँ पर रखा हुआ है उसकी दूरी को आप मेजर कर लेंगे। ये रफली आपके कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद आपको मैंने ये भी बताया था कि जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की लेंथ की हाफ होती है, यानी कि f इज ऑलवेज इक्वल टू r बाय 2। r क्या है, कैपिटल R जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ लेंथ जो होती है वो फोकल लेंथ के इक्वल होती है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आउटलाइन है, सर्कुलर आउटलाइन है, आपके जो मिरर्स हैं वो सर्कुलर हैं, लेकिन पूरी सर्कल नहीं है, कम्प्लीटली सर्कुलर नहीं है, लेकिन किसी सर्कल का वो पार्ट है और देखने में वो सर्कुलर ही है, कर्व्ड ही है। तो जो इसकी सरफेस है कॉनकेव मिरर की या फिर कॉन्वेक्स मिरर की, वो सरफेस कैसी है, वो कर्व्ड है, सर्कुलर आउटलाइन आपको दिख रही है। तो जितनी कर्व्ड पार्ट है उसकी जो लेंथ है, स्ट्रेट लाइन से अगर आप जब मेजर करेंगे तो वो लेंथ जो होगी वो उस आपके स्फेरिकल मिरर की या फिर जो आपके मिरर्स हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये उसका अपर्चर कहलाते हैं। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर पहले देखो पेज नंबर 162 पर फिगर 10.2, इसमें आप लोगों को दो कर्व्ड मिरर्स दिख रहे हैं। अब ये कर्व्ड मिरर्स जो हैं, इसको आप मेजर भी कर सकते हैं, इसका लेंथ आप स्केल लगाएंगे और इन कर्व्ड मिरर्स की लेंथ को मेजर करेंगे। तो लेंथ जो होगी वो कैसे होगी, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं लेबलिंग कैपिटल एम कैपिटल एन, तो ये लेबलिंग जो है आप एक स्केल से जब इसको मेजर करेंगे एम एन डिस्टेंस, तो यही आपके मिरर का अपर्चर कहलाता है, अपर्चर ऑफ द मिरर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर। आपको पता है कि क्योंकि दोनों ही मिरर्स कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज हैं, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती हैं, इतनी इनमें कैपेसिटी है, तो ये इमेज का फॉर्मेशन भी करेंगी। तो यहाँ पर हम बारी बारी से देखेंगे कि कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होती है जब उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट की रेज पड़ती हैं, और कॉन्वेक्स मिरर की किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर फिर से आपको एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है पेज नंबर 163 पर, एक्टिविटी 10.3। ये एक्टिविटी बहुत ही इजी है, आप इसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। आप सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर लेंगे, और जिस तरीके से आपने एक्टिविटी 10.2 में फोकल लेंथ पता की, वो फोकल लेंथ आपको उसी तरीके से पता करनी है। कैसे पता करनी है, आपको धूप में जाना है और सूरज से जो किरणें पड़ रही हैं उसको आपको कॉनकेव मिरर पर पड़वाना है, और उससे रिफ्लेक्ट करा करके उस रिफ्लेक्टेड लाइट को, सन से आ रही इंसिडेंट लाइट जब आपके मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, तो उसको आपको रिफ्लेक्टेड लाइट को एक प्लेन शीट ऑफ पेपर पर इकट्ठा कराना है, ऑब्टेन करना है स्क्रीन पर, यानी कि प्लेन शीट ऑफ पेपर पर। उसके बाद जिस जगह पर वो इकट्ठा हो रही होगी, ऑब्टेन हो रही होगी, दिख रही होगी आपको, तो वो पॉइंट जो होगा वो फोकस होगा आपके मिरर का, और जो डिस्टेंस है फोकस का फ्रॉम द मिरर वो फोकल लेंथ होती है। तो इस तरीके से आप फोकल लेंथ पता कर सकते हैं अपने कॉनकेव मिरर का। तो यहाँ पर बेसिकली आपको आपके कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ पता चल गया। अब आप क्या करेंगे कि अपना कॉनकेव मिरर आप लेंगे, अब आप अंदर आ सकते हैं, लैब के अंदर आ सकते हैं, और एक बड़े से टेबल पर आप एक स्टैंड लगा करके अपना कॉनकेव मिरर जो है उसे फिक्स कर देंगे। उसके बाद आप उस जिस भी जगह पर आपने फिक्स किया है वहां पर आप एक स्ट्रेट लाइन टेबल पर खींच सकते हैं चौक से, और आप ये बेसिकली मार्क करेंगे कि इसी जगह पर आपकी कॉनकेव मिरर जो होगी स्ट्रेट लाइन पर फिक्स रहेगी। उसके बाद उस स्ट्रेट लाइन जो आपने ड्रॉ की है टेबल पर, उससे आपको दूसरी दो और स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करनी है। पहली स्ट्रेट लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे वो कितने डिस्टेंस पर करेंगे, फोकल लेंथ के बराबर के डिस्टेंस पर करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक लाइन चौक से खींची है टेबल पर जहाँ पर आपने कॉनकेव मिरर को फिक्स किया है, उससे फोकल लेंथ की दूरी मेजर करके आप एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, जो कि टेबल पर आप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एक और आप ड्रॉ करेंगे, और उसकी डिस्टेंस जो होगी आपके कॉनकेव मिरर से वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जितनी होगी, यानी कि ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ होगी। तो इस तरीके से आपको तीन लाइंस ड्रॉ करनी है। पहली लाइन पर तो आपका कॉनकेव मिरर रहेगा, दूसरी लाइन जो होगी वो फोकल लेंथ के बराबर होगी, और तीसरी जो होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगी। तो आपको बाकी सारी पॉइंट्स तो पता ही है कि पोल जो होता है वो हमेशा कहाँ होता है, आपके कॉनकेव मिरर पर ही होता है। वो पॉइंट जिस पॉइंट से आप अपने कॉनकेव मिरर को या कॉन्वेक्स मिरर को दो इक्वल हाफ्स में ऊपर और नीचे डिवाइड कर सके वो पोल कहलाता है। तो पोल जो होगा वो हमेशा आपके मिरर पर ही लाई करेगा। तो आपका पोल के लिए जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, बेसिकली वो उस लाइन पर होगा जहाँ पर आपने अपने कॉनकेव मिरर को फिक्स किया हुआ है। तो वहां पर आप उस पॉइंट को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप फोकस पॉइंट को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जो पॉइंट जहाँ से सेंटर बनता है स्फेरिकल मिरर का, वो क्या होगा, वो कैपिटल सी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पी सी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और पी एफ जो होगा वो फोकल लेंथ होगा। तो इस तरीके से आपने फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर को ड्रॉ कर दिया है टेबल पर। अब आप अपनी एक्टिविटी को प्रोसीड कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपने जो कॉनकेव मिरर फिक्स कर दिया है, अब आपको इससे इमेजेस बनवानी है। ऑब्जेक्ट आपको रखना है अलग अलग डिस्टेंसेस पर, और इससे आपको इमेज बनवानी है कॉनकेव मिरर से, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनवानी है। तो इसके लिए आपको ये चाहिए कि लाइट बहुत अच्छे से पड़नी चाहिए फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, तो वो लाइट वाला ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिससे लाइट अच्छे से निकल रही हो तो आप एक कैंडल ले सकते हैं। तो कैंडल जो होती है वो लाइट वाली ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट निकल रही है, तो उससे लाइट जब कॉनकेव मिरर पर पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होकर के वो इमेज की फॉर्मेशन करेगी। तो अब आप लोग अपनी एक्टिविटी को जब करना शुरू करेंगे तो आप बेसिकली अपने ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो कैंडल है, जलती हुई कैंडल लेनी है, बुझी हुई नहीं लेनी है, जलती हुई कैंडल लेनी है। तो इस जलती हुई कैंडल को आप अलग अलग जगह पर रखेंगे और इससे जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी कॉनकेव मिरर से, उसको आपको एक स्क्रीन पर ऑब्टेन करना है। स्क्रीन पर आप कैसे ऑब्टेन करेंगे, वापस से आप एक प्लेन शीट ऑफ पेपर लेंगे और उसके ऊपर जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है कॉनकेव मिरर से, उसको आप उस प्लेन शीट ऑफ पेपर पर इकट्ठा करेंगे, यानी कि ऑब्टेन करेंगे। जैसे आपने सन से लाइट जो आ रही थी उसको आपने इकट्ठा किया था प्लेन शीट ऑफ पेपर पर, ठीक वैसे ही आपको इस केस में भी करना है। तो हम लोग एक्टिविटी जो है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है आप उसे काफी ज्यादा दूरी पर रखेंगे, और जब आप अपने ऑब्जेक्ट को काफी ज्यादा दूरी पर रखते हैं तो उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो कहाँ पर कन्वर्ज होती है, कहाँ पर इकट्ठा होती है, फोकस पॉइंट पर। तो ये तो आप लोगों को पता ही है, आपने सन से लाइट रिफ्लेक्ट करवा करके फोकस करवाया था एक प्लेन शीट ऑफ पेपर पर। तो आप ये जानते हैं कि जब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा दूरी पर रखा है उससे जो लाइट आती है, इंसिडेंट होती है कॉनकेव मिरर पर, तो रिफ्लेक्ट होकर के वो फोकस पॉइंट पर इकट्ठा होती है और जो इमेज बनती है वो हाईली डिमिनिश्ड होती है। डिमिनिश्ड यानी कि बहुत ही छोटी छोटी है। ये आप कैसे समझ रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि सन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। सन का साइज तो अर्थ से भी बड़ा है, लेकिन उसकी इमेज को आप एक प्लेन शीट ऑफ पेपर पर ला पा रहे हैं, ऑब्टेन कर पा रहे हैं। इसका मीनिंग है कि वहां पर इमेज जो है वो सन की बहुत छोटी बनी है। इसका मतलब है कि जब भी कभी इन्फिनिटी पर बहुत दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो और कॉनकेव मिरर पर उसकी लाइट पड़े तो रिफ्लेक्ट होकर के जो उसकी इमेज बनती है वो बहुत छोटी बनती है, साथ ही में वो रियल होती है। रियल होती है इसका मतलब ये है कि आप उस ऑब्जेक्ट की इमेज को किसी स्क्रीन पर ला पा रहे हैं, ऑब्टेन कर पा रहे हैं। प्लेन मिरर के केस में ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कि प्लेन मिरर से जब इमेज बनती है तो उसे आप किसी स्क्रीन पर नहीं ला पाते हैं, वो तो इमेज मिरर के इनसाइड बनती है तो आप उसे किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। तो कॉनकेव मिरर से जब इमेज की फॉर्मेशन हो रही हो, जिस वक्त ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पर रखा है, तो वो इमेज जो होती है वो रियल होती है, इन्वर्टेड भी होती है, यानी कि उल्टी होती है। सिर की जगह पैर और पैर की जगह सिर, इस तरीके से होता है, लेकिन ये आप लोगों को दिखेगा नहीं क्योंकि सन जो होता है वो स्फेरिकल होता है, तो आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि रियल तो है, ये तो पता चलेगा, लेकिन इन्वर्टेड है कि नहीं ये नहीं पता चलेगा। तो अगर आपको इन्वर्टेड है या नहीं ये पता लगाना है तो कैंडल वाले से, जो कैंडल आपने लिया हुआ है इससे भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बहुत दूरी पर आपको कैंडल रखना है और आपको फोकस पॉइंट के पास में अपना प्लेन शीट ऑफ पेपर लेकर के जाना है, जो उसकी इमेज बनेगी कैंडल की वो फोकस के आसपास ही बनेगी। तो ये तो फर्स्ट आपका स्टेप हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, आपको अपना जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी रखना है। यानी कि सी तो आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपने लाइन मार्क की हुई है, ड्रॉ की हुई है चौक से, तो सी के भी आगे रखना है आपको। तो आप अपना कैंडल जो है वो सी के आगे रखेंगे, कुछ दूरी पर रखेंगे सी से आगे की तरफ। उसके बाद जो उसकी इमेज बनेगी वो बनेगी बिटवीन एफ एंड सी। ये मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा आगे पीछे करेंगे जब आप उसकी इमेज ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो आप बिटवीन एफ एंड सी, जो फोकस पॉइंट है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट है, इसके बीच की जो दूरी है, इधर ही आपको अपने स्क्रीन को आगे पीछे करना है। तो आगे पीछे करते करते आप देखेंगे कि एक पॉइंट पर आपको वहां पर उसकी इमेज मिल जाएगी, जो ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है बियॉन्ड सी उसकी इमेज आपको मिलेगी बिटवीन एफ एंड सी। और ये जो इमेज होती है ये डिमिनिश्ड होती है, छोटे साइज की होती है, रियल होती है, रियल इसलिए क्योंकि आप इसे स्क्रीन पर ला पा रहे हैं, और इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। यहाँ पर जो उसकी जलने वाली पार्ट होगी कैंडल की वो नीचे दिखेगी आपको, और उसकी जो कैंडल वाली मोम वाली पार्ट होगी वो ऊपर दिखेगी, उल्टी बनती है। जब भी कॉनकेव मिरर से इमेज बनती है तो इन्वर्टेड बनती है। उसके बाद थर्ड आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट को रखना है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब आप अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसकी इमेज जो बनेगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, और ये सेम साइज की बनती है इमेज, और रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन सी एंड एफ। सी क्या है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एफ क्या है, यहाँ पर एफ है फोकस पॉइंट। तो जो आपने दो लाइंस ड्रॉ की हुई हैं उसके बीच में आपको रखना है। एक लाइन आपने फोकस के लिए ड्रॉ की है, दूसरी आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए ड्रॉ की है, तो आपको इन बिटवीन सी एंड एफ अपना ऑब्जेक्ट रखना है। इसकी जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड सी बनेगी, तो आपको अपने स्क्रीन को आगे पीछे करते रहना पड़ेगा जब तक आपको इमेज ना मिल जाए। आपको जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, आपको वो एनलार्ज्ड मिलेगी, साइज बड़ी मिलेगी, और उसकी इमेज जो होगी वो कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। उसके बाद आप जब अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पर रखेंगे, कॉनकेव मिरर के फोकस पॉइंट पर रखेंगे, तो उसकी इमेज जो होगी वो इन्फिनिटी पर बनेगी। इन्फिनिटी पर बनेगी यानी कि बहुत दूर किसी जगह पर उसकी इमेज आपको दिखेगी, या फिर अगर आपको नहीं भी दिख रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि इसकी जो इमेज बनती है, अगर फोकस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज जो होती है वो इन्फिनिटी पर बनती है, और इन्फिनिटी पर जब इमेज बनती है तो वो हाईली एनलार्ज्ड होती है, बहुत बड़े साइज की होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। स्क्रीन पर तो लाया जा सकता है लेकिन दूर किसी स्क्रीन पर लाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप बेसिकली क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे आप अपने ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जाते हैं तो इमेज की साइज जो है वो बड़ी होती जाती है, और जैसे जैसे आप अपने ऑब्जेक्ट को दूर रखते हैं मिरर से तो वहां पर उसकी इमेज जो होती है वो छोटे साइज की बनती है। तो इस तरीके से डिस्टेंस में वेरिएशन करने से इमेज की साइज में वेरिएशन दिख रहा है। साथ में एक बात हमने अभी तक देखी है, जो हमने एक्टिविटी की है उसमें हमने ये देखा है कि हमेशा रियल इमेज बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, लेकिन आपको इससे ये नहीं समझना है कि कॉनकेव मिरर केवल रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है। कॉनकेव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज भी बना सकता है। वर्चुअल का मतलब ऐसा इमेज जो आप स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर सकते, जैसा प्लेन मिरर बनाता है, तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, उसे आप स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर सकते, और इरेक्ट भी बनाएगा। इरेक्ट मतलब सीधी बनाएगा, अभी तक ये उल्टी बना रहा था लेकिन इस बार ये सीधी इमेज बनाएगा। और ये कैसे बनाएगा, जब आप अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन पी एंड एफ, पी क्या है, पोल है, एफ क्या है, फोकस पॉइंट है, तो आप जब अपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन पी एंड एफ रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, तो उस वक्त जो उसकी इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। इसका मतलब है कि अब आपको स्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको मिरर में देखना है, मिरर में उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही होगी जो कि हाईली एनलार्ज आपको दिखेगी, वर्चुअल होगी, कैंडल जैसे खड़ा है वैसी ही उसकी इमेज बनेगी, वो मिरर के अंदर होगी और इरेक्ट होगी, सीधी होगी। तो इस तरीके से आपको अपनी एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी 10.3। ये बहुत ही मजेदार एक्टिविटी है, इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ आप लोग इसे करें ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरीके से कॉनकेव मिरर से इमेज की फॉर्मेशन होती है ऑफ एन इल्यूमिनेटिंग लाइट वाला ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमने एक्टिविटी कर ली, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गया जो कि आप लोगों को एक टेबुलर फॉर्म में दिया भी गया है। टेबल 10.1 में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है ऑन पेज नंबर 164। तो ये इन्फॉर्मेशन आप यूज करेंगे, और इस बार आपको क्या करना है, आपको जो आपने एक्टिविटी की है, अब एक्टिविटी तो आप लोग कर चुके हैं, अब इसको आपको पेपर पर रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए, डायग्रामेटिकली आपको बनाना आना चाहिए कि किस तरीके से जो लाइट होती है वो पड़ती है, कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होती है, फिर उससे रिफ्लेक्ट होती है, फिर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये आप लोगों को जो डायग्राम्स बनाने होते हैं, इनको बनाने के लिए कुछ आप लोगों को रूल्स या फिर कुछ आपको बातें ध्यान में रखनी होती हैं। तो दो चार कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जब आप लोग एक इमेज फॉर्मेशन दिखा रहे होंगे, जो कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर से इमेज होगी वो किस तरीके से बनेगी, लाइट इंसिडेंट कैसी होती है, रिफ्लेक्ट कैसी होती है, ये आप लोगों को कुछ बातें ध्यान रखनी है, उसके बाद आप आसानी से रे डायग्राम बना सकते हैं। हाँ, इसे रे डायग्राम कहते हैं, जो आप लोग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और इमेज कैसे बन रही है, ये सारा कुछ आप जब डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं, पेपर पर पेंसिल और स्केल की मदद से आप जब डायग्राम बनाते हैं तो इसे रे डायग्राम कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप लेंगे एक कॉम्पस, और कॉम्पस में पेंसिल लगा करके आप एक स्फेरिकल मिरर ड्रॉ कर लेंगे। आप कॉन्वेक्स मिरर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इससे आप कॉनकेव मिरर भी ड्रॉ कर सकते हैं। और आपको पता है कि आपने जो कॉम्पस लिया है उसमें एक नीडल लाइक नीडल के जैसी एक उसमें पॉइंट होती है, एक पार्ट होता है जो नीडल के जैसा होता है, जो आप लोग लगाते हैं पेपर पर, और दूसरी साइड पेंसिल होता है जिससे आपकी अपनी स्फेयर जो है या फिर सर्कल जो है उसको ड्रॉ करते हैं। तो जो नीडल वाली पार्ट है वो एक होल कर देती है आपके पेपर पर, तो वो पॉइंट जो होगा आप उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर लेंगे और अपना स्फीयर जो है उसका एक छोटा पार्ट या फिर सर्कल का छोटा पार्ट आप ड्रॉ करेंगे जो कि कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर का काम करेगा। अब जैसे ही आप अपना कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेंगे तो उसके ऊपर वो पॉइंट जो उस कॉनकेव मिरर को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है उसे पोल कहेंगे और उसे आप कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आप जो आपने सी बनाया है सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो सी आपने बनाया था ओरिजिन बनाया था उसको पोल से आप कनेक्ट कर देंगे, एक स्केल लेंगे पेंसिल लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेंगे और वो स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास कर रही होगी पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की हाफ डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी फोकल लेंथ होगी। तो कैपिटल पी से आप एक डिस्टेंस मेजर करेंगे जो हाफ होगी ऑफ कैपिटल पी एंड कैपिटल सी और ये जो होगी ये फोकल लेंथ कहलाएगी और वो पॉइंट जो पी और सी की लेंथ पर पड़ रहा होगा वो क्या कहलाएगा वो फोकस पॉइंट कहलाएगा, उसे आप कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। तो जब भी आप रे डायग्राम बनाते हैं तो इतना काम तो आपको करना ही है, उसके बाद आपका जो बाकी का काम है वो अब शुरू होता है। पहले तो आपको इतना काम करना ही है, आपको पोल बना देना है, फोकस बना देना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना देना है और एक लाइन इन तीनों को कनेक्ट करती हुई बना देनी है। उसके बाद जो रूल्स हैं अब उनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला रूल ये है कि जब भी कभी पैरेलल लाइट इंसिडेंट होती है पड़ती है आपके कॉनकेव मिरर पर या फिर कॉन्वेक्स मिरर पर तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जिस पॉइंट से पास होती है वो उस कॉनकेव मिरर का फोकस पॉइंट होता है। हमेशा ऐसा ही होता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर हो कोई लेंस हो, उससे जब भी लाइट इंसिडेंट होकर के रिफ्लेक्ट होगी या फिर लेंस के केस में वो रिफ्रैक्ट होती है। तो यहाँ पर हम मिरर की बात करें, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के कॉनकेव मिरर से भी कॉन्वेक्स मिरर से भी वो पॉइंट जहाँ पर ये कट करती है वो पॉइंट जो होता है वो हमेशा फोकस पॉइंट होता है। कॉनकेव मिरर के केस में फोकस पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस पॉइंट बिहाइंड द मिरर होता है। और जो बात मैंने आपको अभी बताई है वो आप लोगों को पेज नंबर 164 पर फिगर 10.3 ए पार्ट और बी पार्ट में दिखाया गया है। ए पार्ट में फोकस पॉइंट दिखा रहे हैं आपको जब इंसिडेंट रे होती है रिफ्लेक्ट होकर के जिस पॉइंट पर वो कट कर रही है पी और सी जो लेंथ है उसको कट कर रही है लाइन को, पी सी लाइन को जो कट कर रही है वो फोकस पॉइंट है और हमेशा ऐसे ही होता है। और यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में भी दिखाया गया है कि पी सी लाइन को कट करती हुई जो पॉइंट है वो फोकस पॉइंट है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी कभी इंसिडेंट लाइट होगी जो कि पैरेलल होगी, पैरेलल किसकी होगी पी सी लाइन जो है उसके पैरेलल होगी, तो पैरेलल लाइन जब भी इंसिडेंट होती है एट द मिरर तो वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस पॉइंट को कट करती है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट बेसिकली फर्स्ट पॉइंट का ऑपोजिट पॉइंट है। इसका मतलब है कि पहले तो आपने फर्स्ट पॉइंट में तो इंसिडेंट लाइट जो थी वो पैरेलल टू दी पीसी लाइन थी, इस बार आपकी जो लाइट पड़ेगी वो कैसी पड़ेगी, वो ऐसी पड़ेगी कि इंसिडेंट लाइट जो होगी वो फोकस पॉइंट से पास कर रही होगी, फोकस पॉइंट को कट करती हुई एक लाइन आप अगर इंसिडेंट कराते हैं कॉनकेव मिरर पर या फिर कॉन्वेक्स मिरर पर तो वो जब रिफ्लेक्ट होती है कॉनकेव मिरर से या फिर कॉन्वेक्स मिरर से तो वो रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलली रिफ्लेक्ट होती है। पैरेलली किसके पैरेलल, वो पीसी लाइन के पैरेलली रिफ्लेक्ट होती है। तो आपको समझ में आ गया कि जब भी लाइट इंसिडेंट होती है और वो लाइट फोकस पॉइंट से पास करती हुई इंसिडेंट होती है ऑन द मिरर तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलली रिफ्लेक्ट होती है, पैरेलल टू द पीसी लाइन। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट जो है वो हमें ये बताता है कि तो जब भी कभी लाइट पड़ेगी हमारे कॉनकेव मिरर पर या फिर कॉन्वेक्स मिरर पर और ये लाइट कैसे पड़नी चाहिए, ये लाइट ऐसे पड़नी चाहिए कि ये लाइट की जो लाइन है ये हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो। तो ये लाइट जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करती हुई हमारे कॉनकेव मिरर पर या फिर कॉन्वेक्स मिरर पर पड़ेगी। तो ऐसे में जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है कॉनकेव मिरर पर या फिर कॉन्वेक्स मिरर पर और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करती हुई इंसिडेंट होती है तो जब ये रिफ्लेक्ट होती है तब भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करती है, ये किसी और लाइन से नहीं पास करती है, सेम लाइन से अपने पाथ को रिट्रेस करती है। इसका मतलब है अपने पाथ को रिट्रेस करने का क्या मतलब है कि उसी पाथ से जिस पाथ से ये आई है उसी पाथ से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये भी आपके काफी काम आएगा जब आप रे डायग्राम बनाएंगे। तो जब भी आप ऐसी कोई लाइन बनाएंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करती हुई इंसिडेंट होगी, कॉनकेव मिरर पर या फिर कॉन्वेक्स मिरर पर, तो ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ये आप लोगों को दिखाया भी गया है डायग्रामेटिकली पेज नंबर 165 पर फिगर 10.5A। इसमें आप लोगों को कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे जब लाइट इंसिडेंट होती है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई इंसिडेंट होती है मिरर पर, तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। एरो जब मिरर की तरफ बनाया जा रहा है, इसका मतलब है कि वो लाइट इंसिडेंट लाइट की रे है, और जब एरो अवे फ्रॉम द मिरर बनाया जाता है तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिफ्लेक्टेड रे की लाइट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेम ही लाइन पर रिफ्लेक्टेड रे की एरो भी बनाई गई है और इंसिडेंट रे की एरो भी बनाई है। इसका मतलब है कि लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है। उसके बाद लास्ट पॉइंट जिसको आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जब भी कभी आप कोई ऑब्लिक इंसिडेंट रे पड़वाते हैं अपने कॉनकेव मिरर पर या फिर कॉन्वेक्स मिरर पर, तो उससे वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और जो एंगल बनता है इंसिडेंट एंगल वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग एक प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं, तो प्लेन मिरर में हम लोग को पता है कि वो पॉइंट जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होती है फिर वहां से रिफ्लेक्ट होती है, तो वहां पर एक अगर नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर टू द मिरर हम बनाए तो उससे मेजर करेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, तो वो एंगल्स जो होंगी वो आपस में बराबर होती है। ये तो हमने प्लेन मिरर के लिए पढ़ा हुआ है, लेकिन ये बात सिर्फ प्लेन मिरर के लिए नहीं वैलिड होती है, ये बात हर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए वैलिड होती है। तो ये जो हमारे कर्व्ड मिरर्स हैं ये भी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं, ये भी तो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो सेम एंगल बनाएंगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पर भी वैलिड होंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि आपने जो मिरर ड्रॉ किया है कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर, इस पर आपने पहले से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हुई है। कौन सी लाइन ड्रॉ की हुई है? लाइन PC, वो लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से पास करती हुई लाइन है, ये परपेंडिकुलर टू द मिरर आपने बनाई है। तो इस परपेंडिकुलर टू द मिरर वाली लाइन से इस पर कोई एंगल बनाती हुई आप लाइट इंसिडेंट कराइए, तो वो एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और इंसिडेंट रे से एक एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्टेड लाइट भी बनेगी। और इस केस में आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे मेजर करेंगे? जो आपने लाइन PC बनाई है उससे एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्टेड रे होगी, तो वो एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। यहाँ पर आप लोगों को डायग्रामेटिकली भी दिखाया गया है फिगर 10.6 में ऑन पेज नंबर 165, किस तरीके से कॉनकेव मिरर पर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो वो आपका परपेंडिकुलर टू द मिरर है वो क्या है, वो यहाँ पर PC, वो लाइन जो कि पोल को, फोकस को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैरी कर रहा है, ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर टू द मिरर का काम कर रहा है। और इसी परपेंडिकुलर टू द मिरर से लाइट इंसिडेंट होती है तो वहां पर एक एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसी परपेंडिकुलर टू द मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है तो वहां जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन बोथ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको यहाँ पर बेसिकली ये सारी बातें जो हमने की हैं, ये जो चार लॉज हमने बात की हैं कि किस तरीके से रे डायग्राम बनाते वक्त आपको इन चारों बातों का ध्यान रखना है, और इन चारों बातों का ध्यान रखे आप बहुत आसानी से इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय एनी स्फेरिकल मिरर। उसके बाद यहाँ पर आप लोग आ जाओ पेज नंबर 166 पर। यहाँ पर आप लोगों ने जो एक्टिविटी की थी, एक्टिविटी 10.3, इसमें आपने क्या किया था, आपने ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगहों पर रखा था, फिर उससे इमेज की फॉर्मेशन हुई थी जो कि अलग अलग जगहों पर हुई थी। तो वो सारा जो है, जो आपने एक्टिविटी की है उसका रे डायग्राम यहाँ पर के बनाया गया है पेज नंबर 166 पर फिगर 10.7। तो कॉनकेव मिरर से इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है जब अलग अलग जगहों पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, वो सारा आपको रे डायग्राम के जरिए दिखाया गया है। आपको सिर्फ ये स्टडी कर लेना है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, और आपको आज का काम आपका यही है, आज आपने जो पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेना है, साथ में आपको ये रे डायग्राम्स जो है इसे समझने की कोशिश करनी है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आपको कोई डाउट्स हो तो आप अपने टीचर से जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।